आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारल के समयसार गाथा 34 एवं 35 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराय और क्या चकाते चित्त भावाय भावाय सर्वभावन।
34-35 में गाथा समय सार की चल रही थी, उसके ऊपर जो 29वां कलश था उसको रात की चर्चा चली थी। थोड़ी बाकी है। कलश इस प्रकार है, अब तरति न यावत वृत्ति मत्यंत वेगात अनब पर प्रभावा त्याग दृष्टान्त दृष्टि झटति सकल भावी रन्नदीय विमुक्ता स्वयं अनुभूति स्थावजर्भाव है। कि जब तक ये दृष्टान्त की दृष्टि फीकी न पड़ जाए और जब तक दबा हुआ मोह उदय में न आ जाए, जो वेगवती वृत्ति है जो पुरानी हमारी अनादिकालीन अभ्यास से चली आ रही है, जब तक फिर वो उदय में न आ जाए तब तक आत्मा का अनुभव प्रगट हो गया, ऐसा बोलते हैं। देखो इसके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पर भाव का त्याग कैसे होता है और आत्मानुभूति प्रगट कैसे होती है, इस बात को आचार्य देव ने दृष्टांत देकर बहुत अच्छी तरह समझाया है। श्रोताओं और पाठकों की समझ में बात आ गई है, ऐसा मान के चलते हैं आचार्य, आपकी में आई हो चाहे नहीं आई हो, क्योंकि आखिर आप न समझें तो ग्रंथ तो आगे बढ़ेगा ना। एक ही बात को आचार्य देव कब तक समझाते रहेंगे, वे तो जितना समझते हैं उचित उतना समझाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो ये मान करके कि श्रोताओं की समझ में बात आ गई है, देखा ना, श्रोताओं और पाठकों की समझ में बात आ गई है और उनके हृदय में आत्मानुभूति की भावना भी जग गई है कि मुझे आत्मानुभूति करना ही है। पर यदि ऐसे में यहाँ तक आ गए और यहीं अटक गए तो कुछ काम होने वाला नहीं है। देवीलाल जी साहब क्या, पर यदि ऐसे में उग्र पुरुषार्थ नहीं हुआ तो थोड़े ही समय में वृत्ति में मलिनता हो सकती है, समझ भी फीकी पड़ सकती है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, महान अवसर है, इसे चूकना योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि जब तक वृत्ति मलिन नहीं हो जाती और समझ भी फीकी नहीं हो जाती, उसके पूर्व ही उग्र पुरुषार्थ करके आत्मानुभूति प्रकट कर लेना चाहिए। अकेले आत्मा की ही बात नहीं है, लोक में हर मामले में ऐसा होता है कि जब कोई वातावरण बहुत बढ़िया होता है तो हमारे और आपके परिणामों में बहुत निर्मलता होती है, तो उत्साह में आकर के मेरा 1,00,000 लिख दो, होते कि नहीं, बोल देते कि नहीं बोल देते, और फिर आध घंटे में जब फंक्शन खत्म हो जाता है और लौट के घर तक पहुंचते हैं तो विचार आने लगता है कि 51,000 बोलता तो भी चलता, पता क्या नहीं पता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है यदि ऐसे कम रहते हो तो। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा होता ही है, यदि ऐसा कम रहते हैं तो पूरी उगाई क्यों नहीं होती है और उसमें बरसों क्यों लगते हैं, कहां चल रहे, उससे सिद्ध होता है ना कि परिणामों में स्थिरता आती है, वस्तु के स्वरूप में परिणाम कभी एक साथ रह ही नहीं सकता, बढ़ भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अरे भाई मैंने 1,000 तक बोली लगाई थी सौधर्मेंद्र की और 1,25,000 में फलाना ले गया, तो उसमें क्या था, मेरे को क्या कमी थी, 2,00,000 भी देता तो क्या फर्क पड़ता था, अब गया मौका तो उस वक्त परिणाम नहीं था और भाव में बढ़ भी सकता है, घटने की बात नहीं है, लेकिन घटना बढ़ना ये परिणाम का स्वभाव है, ये परिणाम तो आश्रम भाव है ना, ये परिणाम राग वाला परिणाम। तो आश्रम भाव को 73वीं गाथा में, 72-74वीं गाथा में क्या कहा? घटने वाला जैसा कि वो बुखार होता है ना, घटता बढ़ता ज्वर की भांति, वायु के वेग की भांति, ऐसा ही आश्रम घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए परिणामों में घटा भरी तो होती ही है, ये स्वभाव है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अकेला हमारा दोष है भाई, हर आदमी का ये परिणामों का स्वभाव है। आचार्य तो ये कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि परिणाम घटते बढ़ते क्यों है। वे तो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारे परिणाम बढ़े हैं, वो मौका को जाने मत दो, तुम उसी वक्त कर डालो जो करना है, क्योंकि अगले क्षण परिणाम गिरे बिना रहेंगे नहीं। तुम इस सत्य को समझो कि मेरे नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं समझना। वो तो फैक्ट है कि वो तो गिरते ही हैं, तो क्या करें? वैसे लोग कहते नहीं नहीं सोच समझ के करें, उसमें क्या है, जल्दी कर लेंगे तो कभी भी कर देंगे, घर में आए ना। तो ऐसे करने वाले कभी नहीं कर पाते। अगले दान की बात नहीं है, तो दान तो उदाहरण के लिए दिया है, ये आत्मा के कल्याण की बात है। चलो आप दुबलाली में आए हैं, सब धंधा पानी बंद करके, तो आत्म कल्याण की भावना से आए कि नहीं आए? तो यहाँ जैसे परिणाम रहते हैं, तो यहाँ से लौट के जब धंधे पानी में चले जाते हैं वैसे ही रहते हैं क्या? क्यों ऐसे ही जब आप प्रवचन में सुनते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो परिणामों में जैसी निर्मलता रहती है, ये उसके बाद भी वैसी रहती है क्यों? अभी यहाँ होते हैं और वो कोई याद है कि भाई आपका फोन आया है सिंध भाई, तो आपको चिड़ छूटती है, क्या क्या है बीच में, अरे कह रहे बाद में बात करें, किसका है नोट कर लो, होता है ना। और फिर जब आप घर में पहुंच जाते हैं, तो दूसरे दिन उसने कहा उसका फोन आया था, तो मैंने कहा भाई तो प्रवचन में है, बाद में बात करना, इतनी अकल नहीं है तो बुला नहीं सकता था, क्या हो गया इनको? प्रवचन में बुलाया था तो कहता कि तुम बीच में क्यों आया, कह देता बाद में बात कर लेंगे, मैंने नहीं पूछा किसका था, और अब कहता है। तो उस वक्त का परिणाम में जितना उधर का लगाव था उससे एक डिस्टरबेंस लगा था, अब यहाँ आकर कुर्सी पर बैठते ही इधर के में महत्व दिखने लग गया, जब वो गया वो निकल गया होगा, बात बहुत जरूरी करनी थी, अब काम बिगड़ जाएगा, तो उसमें क्या है, बीच में उठ के आ जाता, परिणाम में फर्क आया कि नहीं? वो समझता है कि क्या हो गया इनको, हुआ कुछ नहीं है, ये तो परिणाम का स्वभाव है भाई साहब। एक जो निराला कवि के बारे में आता है, तो उसकी ये हालत थी, तो एक कप चाय लाना, तो वो चाय बना के ला गए उसी मैसेज, और तब तक वो कविता लिखने में बैठ जाए, और वो आगे चाय रख दे, पी लो पी लो पी लो पी लो, चुप रहे चुप रहे, और वो चाय ठंडी हो जाए, वो लिखने में मस्त रहे कि तुमने इतनी चाय मंगाई, मंगाने में देर हो जाए तो माथा गर्म हो जाता है, और ला के रख दी तो पी नहीं, बेकार होगी। तो क्या करे, तो उस वक्त का जो विकल्प था वो पीने का था, अब उसमें लग गया वो कविता लिखने में विकल्प चला गया, अब उसमें ऐसा रम गया कि उधर हंसने में उसको बहुत तकलीफ महसूस होती है, और वो तो गई ऐसे होती है, जो बात दिमाग में आई और उसी वक्त वो लिखी गई तो लिखी गई, और यदि वो चाय पीने में गई तो गई, चाय ठंडी होती, तेरे को चाय ठंडी होने लगता है, तेरे को लगता है कि वो मेरा मशीनरी जो गर्म हुई थी ना लिखने की, बात ठंडी हो गई, तो क्या करूँ होगा, पता ही नहीं वाला। ऐसे ही वो परिणाम का स्वरूप ऐसा है, वो विचार करने की बात है। तो इससे क्या सीखना डॉक्टर साहब? इससे ये सीखना कि जब ऊंचा परिणाम हो तो जो करना हो उस पर कर डालना, त्याग दृष्टांत दृष्टि। दृष्टांत के द्वारा हमने जो आत्मा की बात समझाई, जब तक वो समझ तेरी फीकी न पड़े और वैराग्य की वृत्ति तेरी हल्की न पड़े और जो विषय कसाई की वृत्ति अत्यंत वेग को प्राप्त न हो, उसके पहले आत्मानुभूति तो प्रकट हो गई। हो गई मैंने कर ले भाई साहब, ये ऐसा काम है कि बिजली चमके और सूरज सुई में डोरा डाल ले, रात्रि में तेरे को सुई में डोरा डालना है और बुझेने की व्यवस्था है नहीं, तो क्या करना है, बिजली के चमक के उजेले में तेरे को डालना है, तो कैसे होगा कि जब बिजली चमके तब तू सुई डोरा खोजे के कहां रखी सुई, लाओ 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 लाओ, तो मार तूने डाल दिया, ऐसा हाथ में ऐसा लेकर के बिल्कुल तैयार डोरा और सुई ऐसा एकदम ऐसा तैयार रहे, तो बिजली चमके और डाल ले, अभी चमक के वो बंद हो गई बिजली, तो अब चमकेगी तब डालना पड़ेगा, तो तब तक तो फिर आराम से रख दो ना और लेट जाओ, डल गई तेरी, कि दो घंटा नहीं चमकेगी तो नहीं चमकेगी, तो नहीं चमकेगी, तेरे को निरंतर रजनी भाई ऐसा सावधान रहना पड़ेगा तो तू सुई में डोरा डाल पाएगा। तो ऐसा काल कभी कभी आता है तो एकदम उग्र पुरुषार्थ करके और काम कर लेना चाहिए, कमलेश उसमें आता है मोक्ष में प्रकाशक में, कि जब नदी के बेग में कोई बह रहा हो तो तीव्र बेग हो तो उस वक्त हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है, मुफ्त में थकान ज्यादा हो जाएगी और पार पड़ेगी नहीं, तो क्या करे कि चुपचाप शांति से बहता रहे, ऐसा लिखा पानी में बहता रहे, शक्ति को बर्बाद नहीं करे, और जब देखे कि अभी कुछ मंदा हुआ है प्रवाह और मेरा प्रवाह किनारे की तरफ है और सामने एक वृक्ष दिख रहा है, यदि ये वृक्ष की डाली मेरे हाथ में आ गई तो मैं पार हो जाऊंगा, तो पूरी ताकत लगाकर उछल के और वृक्ष की डाली को पकड़ ले, बच जाएगा। अब उसमें क्या है, ये वृक्ष है फिर अगला वृक्ष आएगा उसे पकड़ लूंगा, ऐसा नहीं सोचना कि अगला वृक्ष आएगा कि नहीं, वो अगला वृक्ष आने के पहले तुम ही चल दिए तो, और अगले वृक्ष आने के पहले समुन्दर आ गया तो, और अगला वृक्ष आने के पहले के समय में तू उधर को बह गया तो, वृक्ष के नजदीक नहीं हुआ तो, जो ये वृक्ष दिख रहा है तेरे को सामने, तो पूरी शक्ति लगा के उसमें क्या है, इस शिविर में नहीं हो तो अगले शिविर में देखेंगे, अब तो अगले साल ही शिविर लगना है, हमेशा लग नहीं सकना है शिविर, अब तो क्या है, चलो डॉक्टर साहब शिविर तो लगना है, ये तो नक्की बात है, ये तू रहेगा कि नहीं रहेगा इसका नक्की है, ये तो गंगा की धारा है, गंगा की धारा तो निरंतर बहती रहती है, लेकिन जो गंगा में नहाने गया है वो उसे द्वारा नहाने के आने गंगा में नहाने का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग बात है, क्यों नहीं मिलेगा, गंगा तो बह ही रही है, गंगा थोड़ी बंद होती है, वो तो बारह मासी बहती, गर्मियों में भी नहीं सूखती है, हिमालय का बर्फ पिघलता है तो बहती है, अरे गंगा के बारे में कौन शंका कर रहा है, क्यों शंका, तो तेरे जीवन तेरे परिणाम तेरे स्वास्थ्य तेरे और सारी स्थितियों के बारे में की जा रही है, ऐसे दिनवानी गंगा तो बहेगी, शिविर तो चलेंगे, सब चलेंगे, भगवान महावीर गए ना तो भी कुछ काम नहीं रुका, तो हम तुम्हारी की क्या कीमत है, वो जाएंगे ये काम रुक जाएगा, ये ऐसा सोचना कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भगवान महावीर का अपमान है, भाई वो चले गए और काम नहीं रुका, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलेगा, पृथ्वी निर्वीजक नहीं हुई है, जब सीता का स्वयंवर हो रहा था और कोई भी धनुष को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ तो जनक घबराया और उसके मुंह से निकला वीर विहीन भई मही जानी, क्या कि मेरी समझ में आ गया के पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है,
क्या खाली हो गई है,
वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने ये जाना कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अभी तक राम और लक्ष्मण चुपचाप बैठे थे, ठीक है जो करना हो करो करो, अपन क्या है, वो तो वनवास में आए थे वहां पर ऋषियों की सुरक्षा सुरक्षा के लिए, अभी कोई शादी मादी करने की इच्छा भी नहीं होगी विशेष, वैसे पहुंच गए थे बाप के घर के घर से थोड़ी गए थे देखने के लिए स्वयंवर। लेकिन लक्ष्मण को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये पृथ्वी को वीर से विहीन कह रहा है। ये तो सारे वीरों का अपमान है जो पृथ्वी में है, ये तो वीरों के लिए चैलेंज है। तो उसने सीता से शादी करने के लिए नहीं, लेकिन ये पृथ्वी निर्बीजक न मानी जाए इसके लिए वो तैयार है। क्या बोलते हो, ख्याल में आया ना? तो पृथ्वी कभी निर्बीजक नहीं होती है, पृथ्वी कभी वीरों से रहित नहीं होती है। ये तो धारा अखंड बहेगी, सवाल इसकी धारा का नहीं है, सवाल अपने अवसर का है। ये अवसर चूकना योग्य नहीं है। देखो तो यहाँ भाषा तो ऐसी है कि जब तक मृत्यु मलिन न हो पाई और प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि फीकी नहीं हो पाई, उसके पहले प्रभाव से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रकट हो गई। ऐसी भाषा संस्कृत का तो हिंदी अनुवाद करेंगे ना, तो ऐसी भाषा है, करो की भाषा नहीं है, हो गई। पर यह कहकर आचार्य हमें उग्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। ये नहीं बताना चाहते मुझे सम्मेलन हो गया, मुझे आत्मा का अनुभव हो गया, मैं तो बीतरागी संत मुनिराज से छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका के झूलने वाले, मैं तो हरंत मूत में आत्मा का अनुभव करते थे। क्यों, उनके लिए कोई दृष्टांत की दृष्टि फीकी थोड़ी होने वाली थी, उनका वृत्ति में मलिनता का वेग थोड़ी आने वाला था। साथ में यह भी बताना चाहते हैं कि आत्मानुभूति प्राप्त करने की पूर्व की भूमिका इस प्रकार की होती है। क्या क्या बताना चाहते हैं दूसरी बात बोलू भाई, कि जब आत्मा की अनुभूति होगी तो उसके पहले विकल्पात्मक भूमिका के परिणाम ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं लड्डू खाते खाते चलते फिरते घूमते घूमते फिरते फिरते धंधा पानी करते करते और आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, कहें मुझे आत्मा का अनुभव हो गया, कब हुआ था कि मैं सुबह लेटरिन जा रहा था, हाथ में लोटा लेकर के जा रहा था, जंगल में जाते हैं लोटा लेकर के, तो बस उसमें मुझे अनुभव हुआ तो हाथ में से लोटा छूट गया,
पानी भूल गया,
ऐसा था। वो कोटा के पास हुई थी ना किसी को, एक बहन को सुना था तलक है ना, ऐसा हुआ। तो जुगल जी ने ना वो सब बोला, मैं था बाबू भाई थे सब थे, तो मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, पार्किंसन की बीमारी हो गई होगी। उसके हाथ में भी लोटा गिर जाता है। अरे उसके पहले की भूमिका तो सत्य विचार के चिंतन की निरंतरता की होती है। तो एहसास में तो लिखा है कि चलते फिरते चाहे जब आत्मा का अनुभव हो जाता, वो भी सच्ची लिखा है प्रसन्न भाई, तो सच्चा कैसे लिखा था, लेकिन तुम्हें नहीं होगा तो हमने क्या बिगाड़ा है। वो जो मुनिराजों की बात है कि आहार करते करते चलते फिरते लेटरन को जाते लेटरन करते करते में भी आत्मा का अनुभव हो जाए, क्योंकि तो वो निरंतर की प्रैक्टिस है, वो हर अंतर्भूत में आत्मा को जाते हैं, तो उनका तो वो अभ्यास है। ख्याल में आया ना, ये जो टाइपिस्ट होते हैं ना, कहीं टाइप भी कर जाते हो तुमसे कपड़े भी लगाते जाते हैं, एक गलती नहीं आती है। पहली दफे टाइप करना हो एक एक देख देख के एक एक उंगली रखना पड़ती है, उस लोग तुम्हें आओ वहां देखो गप्पे लगाओ तो नहीं चलेगा, समझ में आया ना। पहले दफे टाइप करना और रोजाना सौ पेज टाइप करने की प्रैक्टिस हो जाने के बाद टाइप करने में फर्क है कि नहीं, तो उनको तो रोजाना आत्मा के अनुभव करने का अनुभव हो गया, और तेरे को अनादिकाल से आज तक हुआ नहीं है, तो पहले बार कर्ण लब्धि होगी। है मूर्ख को पता, झगड़ा में नहीं भैया, इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं, थोड़ा मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए कुछ शब्द ऐसा निकल जाता है, किसी को गाली देना उद्देश्य नहीं है। कि वो कहता है कि तुमको सबसे पहली दफे सम्मय दर्शन हुआ था तो मैं लेटरिन जा रहा था और हाथ में लोटा था, तो ऐसा संभव कर्ण लब्धि के बिना होता है, तो कर्ण लब्धि के परिणामों में लेटरिन जाते वक्त हो सकते हैं। अब मेरा मतलब समझेगा, इसलिए ये बात कहता हूँ कि थोड़ा सा करुणा नियोग को भी पढ़ना चाहिए, अगर समय सार से काम नहीं चलेगा। यदि ऐसी बात होती होती उसे ख्याल में होता है कि उसे पहले कर्ण लब्धि होती है, कर्ण लब्धि के पहले अंतर मुहूर्त तक उसका काल होता है, अधा कर्ण का, अपूर्व कर्ण का, अनिवृत्ति कर्ण का, उसके पहले क्या क्या तत्व विचार की भूमिका होती है, तो वो ऐसी बात नहीं कहता। मैं एक बात कहता हूं, जिन जिन को भी ऐसा भ्रम हो तो वे अपने मन में इस बात का निर्णय कर लें कि ये पंचम काल में सम्यक दर्शन लेके कोई क्षेत्र में पैदा नहीं होता। पहली बात, 8 वर्ष की उम्र के पहले सम्यक दर्शन नहीं होता है। दूसरी बात, 8 वर्ष की उम्र से बाद से लेकर आज तक कोई मोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो हमें सबको अपनी अपनी याद है लगभग, तो अब याद करें कि तब तुम्हें सम्मा दर्शन हुआ था तो उस वक्त उसके घंटा आध घंटा पहले से कुछ क्या हुआ था वो बताओ, तो अब भी हाल में तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें हुआ है कि क्या हुआ है। उसके जो विकल्पों का स्वरूप है और जैसी जैसी बातें वो करते कहते हैं वो उनको यही पता नहीं है कि सम्यक्त के सम्मुख होने वाले मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं। तो अभी तो सम्यक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि की भूमिका नहीं आई है, अरे सम्यक्त कहां से हो जाएगा बोलो ना। पर टोडम जी ने लिखा नहीं सम्यक्त के परिणाम, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। इसकी समय काल की स्थिति तो घोड़े थोड़े काल की है और मुझे तो इसमें मेरा ही हित भाषित होता है, गुरु का स्वाद कुछ दिखाई देता नहीं है, इसलिए मुझे इन बातों का बहुत अच्छी तरह से ठीक माने निर्णय करना चाहिए। ऐसे विकल्प कभी आए? उसे तो ऐसे विकल्प आता है कि उसे स्वाध्याय करने की अटक नहीं रहती, तत्व निर्णय करने की जरूरत नहीं है। क्या करना तत्व फत्व से, तो 7 तत्व से मुझे क्या लेना देना, मेरे 7 तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति चाहिए मेरे को तो क्यों, लेकिन 7 तत्वों में छुपी होगी ना, तो 7 तत्व जानने का नहीं जानने, तो आत्मज्योति 7 तत्वों में छुपी है क्या नहीं, कहो विपिन भाई ख्याल में आती बात करनी आती। तो उसके पहले की क्या भूमिका होती, क्या विकल्प होते हैं, उसके वक्त की क्या स्थिति होती है, उसके बाद की क्या स्थिति होती है, उसका जीवन में उठने में बैठने में सारी सारी बातें जुर्माणी में दी हुई हैं, बहुत स्पष्ट स्पष्ट है ना, और उनका ख्याल नहीं है तो इसलिए बस ऐसा है। बहुत बहुत एक दो नहीं है ये तो, अभी ये जरा समझ लीजिए कि जोर का प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे मैं एक बात कहता हूँ ना कि इस जमाने में भगवानों की ये बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ऐसे ही अभी सम्य दृष्टियों के बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए प्रतिबंध है, नहीं तो यदि अभी तक 100-200 तो घोषित हो जाते, तैयारी में बैठे 2500 और धीमे धीमे अकेले अकेले में घोषणा करते रहते हैं, तो सच बोलता हूँ आपको नहीं? लेकिन ये मेरी बज्र की वाणी छूटे से बहुतों की हिम्मत तो इसलिए नहीं होती है, सच बोलता हूँ, घोषणा करने की हिसाब हो तो आपने प्रतिबंध लगा रखा है सम्य दर्शन होने पे नहीं, झूठों की घोषणा पर, होने पे काहे का प्रतिबंध है, वो हो जाए उसे घोषणा की क्या जरूरत है। एक सीधी सच्ची बात लिखी है नियम सार में, जो निधि पाकर निज बतन में गोप्त रहे जन भोगते, तो ज्ञान निधिता ज्ञानी जन भी गुप्त रहे कर भोगते। कितना साफ है कि तुम्हें निधि मिल जाए, क्यों तुम्हारी तिजोरी में 2-5 करोड़ रुपया हो, अरे मैं पूछूंगा मधु भाई अभी कितने हैं बताओगे, बोलो, कोई बताने वाला नहीं, आप तो आज्ञा करो। कोई बताता नहीं है, तो जिसको निधि हो वो कोई बताता नहीं है, और ये बताने का भाव होता है तो समझ लेना चाहिए कि वो निधि नहीं है,
अकबर साहब
मैं एक बात कहता हूँ, बहुत बड़ा प्रमाण है मेरे पास कि निहाल चंद जी को सम्मान दर्शन हो गया, जो अपना जो भी प्रसिद्ध है ना
कथा,
गुरुदेव को भी उनके स्वर्गवास के बाद ही पता चला ना, भाभी चला। इसमें से दो बातें निकलती हैं बहुत रहस्य की, कदादेव कौन सी दो बातें निकलती है? आप तो सिद्धार्थ साहब तो समझ गए कि एक बात तो ये निकलती है कि हो जाए तो उसको घोषणा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्यों घोषणा नहीं करी उनने, और वो क्यों कम से कम गुरुदेव को तो बता देते, क्यों इससे धोती करनी होती है। और दूसरी ये सिद्ध होती है कि हो जाए तो ज्ञानी भी उसे पहचान ले, ये कोई जरूरी नहीं है, अज्ञानी का तो कोई सवाल ही नहीं है। उदाहरण साहब तुम्हें कहते भगवान जाने केवली जाने, कहते कल कह रहे थे मुझे बार बार बात कर रहे थे, क्यों क्यों नहीं जान लिया गुरुदेव ने उनकी शक्ल देख के, जान लेने तो ये था ना भाई, वे तो ज्ञानी थे ना, इसलिए इन सर्टिफिकेटों में कोई दम नहीं है। क्या जल्दी लेकर बांटना शुरू हो जाता, पहले लिया और फिर उसके बाद में फटाफट बांटना शुरू हो दिया। जैसे हमारे दिगम्बर धर्म में आचार्य हो तो दीक्षा ली फटाफट दो चार मूर दे ले तो फटाफट आचार्य पद कन्फर्म हो जाता कि नहीं, क्या डॉक्टर साहब चंदू भाई ये आचार्य कब बने? तो उन्हें आचार्य पर समाज ने दीक्षा दी तो दो चार को चेले बनाए और उनसे दीक्षा ले लें बसंत भाई, तब वे आचार्य कहलाए ना, संघ के आचार्य, बिना संघ के आचार्य कैसे? तो फटाफट दो चार को दिया तो उनका आचार्य पद कन्फर्म हो जाता है। तो दो चार को सम्मान दृष्टि घोषित किया तो कम से कम मैं तो सम्मान दृष्टि घोषित हो गया ना, क्योंकि तो सम्मान दृष्टि घोषित करने का अधिकार तो सम्मान दृष्टि को है। दो दो बातें सिद्ध ही कहो निहाल जी के, किन्ने
निहाल भाई ने
मतलब बहुतों को हो, आपकी बात सबने नहीं सुनी, मैं पहले सबको बता दूं फिर उसके बारे में कमेंट करूं अपना। ए मधु भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए घोषित नहीं किया कि उनको ये लगा कि सोनगढ़ में बहुतों को हो गया है, इसलिए कोई नवीन बात नहीं है तो मैं क्या घोषित करूं, ये इनका कहना है, इसलिए उनने नहीं किया होगा। अब इस पर मेरी कमेंट भी कि इसका और अधिक सिद्ध हो गया कि सम्यक दृष्टि को पता नहीं चलता है, जब वे सम्यक दृष्टि थे और सम्यक दृष्टियों को पता चल जाता है कि और किन किन को हुआ और किन किन को नहीं हुआ, तो उनको तो औरों को हो गया है, हो गया होगा, इसलिए कोई नवीन बात नहीं है, इसका मतलब उन्हें पता नहीं चला कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और उनको भी दूसरों का पता कन्फर्मेशन नहीं था उनको, क्या अब विचार तो करे, दो जो बातें भी तर्क दी जाती है ना वो सब तर्क में कितना उनके आगे पीछे के मंथन की कमी है, तो उनको भी पता नहीं चला। और इसका मतलब ये है कि 1550 को हो गया हो तो कोई नवीन बात नहीं है, तो घोषणा करने की जरूरत नहीं है, और किसी को नहीं हो तो जरूरत है, ऐसा है? ये तो मार्केट में बहुत मिलता है और ये नहीं मिलता, ऐसी कोई बात है? इससे क्या लाखों को हो तो क्या और नहीं हो तो क्या, उसकी परिणति तो एक सी होना चाहिए ना, क्यों रमन बहन विचार करना। आप ये जो कर्ण लब्धि के परिणामों को पढ़े उसके पहले पे होती है प्रायोपलब्धि, उसके पहले होती है देशनालब्धि, देशनालब्धि के पहले विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तो उसे पता पड़े कि मैं इस प्रक्रिया में से गुजरा हूं कि नहीं गुजरा हूं। मोतीलाल जी साहब तो उसे हुआ कि नहीं हुआ, अब उसे पहले की कोई प्रक्रिया मालूम ही नहीं है, है ना, इसलिए बस कह देता है चाहे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, रात्रि में सो रहा था सोते सोते हो गया, अरे सोते सोते अनंत जागृति की अवस्था में होता है भाई साहब, किसी को चलते फिरते, किसी को खाते पीते, किसी को सोते सोते, किसी को रोते रोते, ये क्या है? अभी उसको सम्यक दृष्टि के भूमिका के पहले के बाद के विकल्प भी कैसे होते हैं इसका भी ख्याल नहीं है। जिनवाणी की मर्यादा के हिसाब से हैं तो भाई साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, होना तो बहुत अच्छी बात है, हो ही जाना थे आचार्य कह रहे ना, त्याग के दृष्टांत की दृष्टि फीकी ना पड़े उसके पहले कर लेना। तो मैं कहता हूं कि सभी को ख्याल में आ जाएगा। देखो अब सभी आत्मार्थी भाई बहनों के साथ लगभग प्रतिदिन ही ऐसा होता है। देखो ये लगा ना कैसा होता है कि जब वे स्वाध्याय करते हैं प्रवचन सुनते हैं तो उनके परिणामों में निर्मलता आती है। अपने साथ रोजी नहीं करता, वृत्ति में निर्मलता आती है और आत्मा की बात समझ में भी आती है, चित्त में बैठती है, पर वहां से हटते ही वृत्ति मलिन हो जाती है, ज्ञानोपयोग भी अन्यत्र भटकने लगता है। ये रोजीना की घटना नहीं है? यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सुने थोड़ा ऐसे को शास्त्र में मालूम क्या नाम दिया है श्रोताओं के भेद बताए टोडामल जी ने, तो उन्होंने बताया कि ये मालवा की मिट्टी जैसे श्रोता होते हैं, एक पत्थर जैसे श्रोता होते हैं। पत्थर जैसे एक कितना ही पानी बरसे उसमें जरा भी नरमाई नहीं आती है, और मालवा की मिट्टी कैसे कि पानी बरसते ही एकदम नरम हो जाती है, बिल्कुल मुलायम हो जाती है, और धूप पड़ी तो ऐसी कड़क हो जाती है कि उन पर पैर रखो तो खून निकल जाए। तो ये मालवा की मिट्टी जैसे श्रोता उदाहरण दिया है उनको, यहाँ ऐसा होते ही और फिर परिणाम सूख जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कैसा कि जब तक वृत्ति में वेग उत्पन्न न हो, प्रभाव के त्याग की भावना फीकी न पड़े, उसके पहले ही आत्मानुभूति प्रकट हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें निरंतर भेद विज्ञान की भावना को भाना चाहिए, नचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भेद विज्ञान की भावना को भाना चाहिए और नचाना चाहिए। यह है बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ। अभी एक गाथा आने वाली है ना संबंधी चिंतन की निरंतरता, ध्यान से सुनना बहुत मार्मिक वाक्य है। चिंतन की निरंतरता में से ही रुचि की तीव्रता होगी। लोग कहते मेरी रुचि कैसे बढ़े, रुचि कैसे बढ़े, रुचि कैसे बढ़े, रुचि कहां से बढ़ेगी? चिंतन की निरंतरता में से ही रुचि की तीव्रता होगी, भावना का प्रबल वेग स्फुरायमान होगा और आत्मानुभूति की भूमिका तैयार होगी। बुद्धि पूर्वक तो यही करना है, पढ़ना पढ़ाना लिखना चिंतन करना विचारना उसी तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में, ख्याल में है ना? और कोई दूसरा मार्ग नहीं है बुद्धि पूर्वक। ये बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं तोड़े जाते हैं, बुद्धि पूर्वक तो अशुभ विकल्पों से शुभ विकल्प होते हैं। जगत के विकल्पों हटकर आत्मा संबंधी विकल्प बुद्धि पूर्वक होते हैं। वो विकल्प तोड़ने की प्रक्रिया बुद्धि पूर्वक नहीं होती है। बुद्धि पूर्वक के दो अर्थ है कि एक तो हम जानबूझकर ऐसा करें उसको भी बुद्धि पूर्वक कहते हैं, और वो हमारे ज्ञान का गेय बने अपने पंचाध्यायी का बुद्धि पूर्वक है, ख्याल में है ना? तो दोनों ही बुद्धि पूर्वक नहीं होता है, ख्याल में है ना? वो तो अबुद्धि पूर्वक होने वाली प्रक्रिया है। ये विकल्पात्मक ज्ञान निर्विकल्प कब बन जाता है तुम्हें ख्याल नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा ख्याल? ज्ञानी को तो आना चाहिए ना ख्याल, चंद्र भाई नहीं आएगा क्यों? कि ज्ञानी तो त्रिकाली ध्रुव ख्याल में आएगा कि बजाय ख्याल में आएगी? वो तो त्रिकाली ध्रुव ख्याल, उसका उपयोग तो किस पर है? जिसका वो विचार कर रहा है वो तो उपयोग वहां ले जाना चाहता है। वो विचार का क्या परिणाम आया वो इसको देखने नहीं जाता। सुनो, जो असली व्यापारी है मैंने आपको उपयोग को मुश्किल से समेट पाया है आपकी तरह से, मैं भी कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। समझे ना कि एक जो व्यापारी है चतुर, खूब उसकी बिजनेस चलता है, लंबी लाइन रखी है, ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है, तो वो अब तक की बिक्री कितने की हो गई, इस विकल्प में आकर वो तिजोरी के नोट गिनने बैठता है, सामने लगे 100 आदमी की लाइन और बैठे तो उसे क्या कहेंगे, मूर्ख नहीं कहेंगे, क्या जरूरत है गिनने की, नोट तेरे तिजोरी में है, अभी तो तुम फटाफट ग्राहक को लेके ग्राहक निपटा, जब तेरे को शांति से फुर्सत मिले, जब सब ग्राहक की बंद हो जाए, खिड़की बंद हो जाए, तब एक गिनना नोट, ठीक है कि नहीं। तो अभी तेरे को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जानने का वही विकल्प पे गया है, उसी का नाम तो आत्मा का अनुभव है ना, वही ज्ञान का गेय बनना है, वही ध्यान का ध्येय बनना है, तो अभी वो कितनी बिक्री हो गई, अब वो कितना हो गया, मेरे परिणाम में कैसे विकल्प आ रहे, ऐसे जानने का विकल्प भी आएगा तो वो उसमें बाधा है क्या, बाधा है कि नहीं, वो तो इसलिए उसके ज्ञान का गे तो यही बनेगा, वो ये देखने नहीं जाएगा कि अभी कितना कितना काम हो गया, कितना बाकी है। देखो आत्मानुभूति मेरे को प्रकट हो गई कि नहीं हो गई, ऐसा विकल्प भी खड़ा नहीं होगा, जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा उसके स्वाद में लग जाएगा ना वो तो। अभी हमारी ये समस्या नहीं है कि वो ज्ञान का गेय नहीं बनेगा, वो जो देवीलाल जी ने कहा है उसका दूसरा अर्थ है, उसका ये अर्थ है कि वो अनुभव किस काम का जिसमें आनंद का स्वाद ही नहीं आया। ओके सम्मान जब हमें हो जाएगा तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा सम्मेलन किस काम का जो हमें पता ही नहीं चले, क्या ख्याल में आया ना, लेकिन उसका ध्यान का ध्येय कौन है, त्रिकाली ध्रुव है ना, कि वो क्षणिक पर्याय जो पैदा हुई है, उसके ज्ञान का ध्येय उस वक्त कौन है, वो त्रिकाली ध्रुव है ना, कि जो क्षणिक पर्याय पैदा हुई है वो, तो वो नोट कब गिनेगा, जब वो खिड़की बंद हो जाएगी, ग्राहकी बंद हो जाएगी, जब वो आत्मानुभूति में से बाहर आएगा, हाँ वो ये कैसी आत्मानुभूति हुई, आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया, वो ये अनुभूति संबंधी विकल्प कब आएंगे, जब काम हो चुका होगा और अनुभूति खत्म हो गई होगी, जब इनकम बंद हो गई होगी, तब कितनी इनकम हुई है ये विकल्प तब खड़ा हो जाएगा, जब तक इनकम चालू है, माने दुकान ग्राहक की एक एक ग्राहक से माल बेचते तो इनकम होती कि नहीं होती है, डॉक्टर साहब ग्राहक को निपटाने के पहले नोट गिनना, मरीज आपके सामने लाइन पे खड़े हैं ना, तो वो निपटाने के पहले नोट गिनना, नोट आज कितने आए हैं, ये विकल्प तो जब कोई मरीज सामने नहीं रहता तभी आता है ना, तभी आना चाहिए ना, बीच में आए तो अच्छा नहीं है ना।